सर्वंग ऋषि के आश्रम में सब ऋषि मुनि इकट्ठे हो गए तो भगवान से उन्होंने कहा कि हे भगवान, आप पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए आए हैं ना, ब्रह्मा जी ने आपसे प्रार्थना की है ना। अरे आप लोगों को क्या पता, आप तो इस घनघोर जंगल में रहते हो, आपको क्या पता कि महाराज जब आप में प्रेम होता है तब आपके प्रेम से, आपकी कृपा से जो आप लीला करना चाहते हैं वो भक्त के मन में अपने आप प्रकट हो जाती है। इसलिए हमें आपके भक्ति के कारण से इस बात का ज्ञान हो गया, ब्रह्मा जी ने आपसे प्रार्थना की है, आप साक्षात विष्णु हैं और ये सीता जी लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मण जी हैं शेषांशम, ये शेषांश है, और अभी आपके शंख और चक्र दो भाई हैं जो अभी अयोध्या में ही हैं, आप ऋषि मुनियों को मुक्त करने के लिए आए हैं, आओ आओ हमारे साथ आओ, हम आपको इस दंडकारण्य में कैसा हृदय विदारक दृश्य दिखाते हैं। क्या हुआ भाई, आप बताइए ऋषिवर क्या है, आप चलिए हमारे साथ। घोर जंगल में ले गए भगवान, अरे ये किसकी हड्डी है, अस्थिनी केशा मेतानी, इतनी हड्डियां, ये इतनी मुंडियां, ये इतने इतने पैर हाथ कटे हुए, ये किसके हैं, राक्षसेन भक्षिता नहीं, ये सब राक्षसों ने खा कर करके यहां पर इनको जो है मार मार के रख दिया है। भगवान का उस समय हृदय, वैसे ही भगवान का हृदय तो कृपा में डूबा ही रहता है, कृपामय होता है, भगवान का हृदय एकदम द्रवित हो गया। भगवान ने प्रतिज्ञा की अशेष राक्षसों का मैं वध करूंगा, आप लोग कोई चिंता मत करो, सबको भगवान ने निर्भय कर दिया। और भगवान कई समय तक वहां रहे, उन ऋषि मुनियों के बीच में रहे, और फिर वहां से वे आगे विदा होते हैं तो सुतीक्ष्ण के आश्रम में आए। सुतीक्ष्ण का आश्रम तो सब ऋतुओं से संपन्न था, सुतीक्ष्ण जी को पता चला, वो सदा ही राम 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 इसी मंत्र की उपासना करता था। देखो हमारे ऋषि मुनि कैसी कैसी बात बोलते हो, ये भगवान का नाम है ना, ये मंत्र है, लोग कहते हैं गुरु मंत्र देव को, कोई विशेष मंत्र बताओ, हमारे घर के अंदर ही आफत आ गई, कोई मंत्र बताओ, कोई ये बताओ, हमारे शास्त्र बराबर बोलते हैं भगवान का नाम इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं होता। कोई भी दुख आए, कोई भी संकट आए, भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, जिसको जो नाम अच्छा लगे। अब क्या बताएं, आजकल तो एक ढर्रा पड़ गया, बस इधर तो हम नाम लेवे मंत्र का जाप कर, उधर हमारा काम बनना चाहिए, और यदि नहीं बनता है तो फिर कोई कोई मंत्रों में शक्ति नहीं है, सब कहने की बातें हैं, लुभाने की बातें हैं, अश्रद्धा भी बहुत जल्दी कर लेते हैं, ये चीजें ऐसी नहीं होती है। ऐसा नहीं कि दुकानदार को पैसा दिया और दुकानदार ने हमको वस्तु दी, ऐसे इधर हम मंत्र बोले इधर हमारा काम होना चाहिए। ये मंत्र क्यों क्यों जपे जाते हैं सज्जनों, अपने मन की कामना की पूर्ति के लिए नहीं जपे जाते हैं, तो उस कामना की पूर्ति नहीं हो रही है, उसकी जो जलन हो रही है उस जलन को मिटाने के लिए मंत्र की उपासना है। जैसे किसी के बेटा नहीं है तो वो बहुत दुखी है, वो भगवान का नाम ले, नाम लेते 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 उसकी वृत्ति ऐसी बदल जाएगी कि बेटा न होने का दुख उसको नहीं होगा, जलन नहीं होगी। अब मंत्र काम तो कहां करते हैं और हम उन मंत्रों को कहां देखना चाहते हैं। इसीलिए देखो कई कई बार डॉक्टर की भूल होती है, वो दवा देता है तो अपने रिएक्शन हो जाता है, ऐसे इन मंत्रों से भी रिएक्शन हो जाता है। आप मंत्रों का उपयोग कहां करना चाहते हैं, मंत्र अपना काम कहीं करते हैं और फिर आप मंत्रों में अश्रद्धा करने लग जाते हैं, अश्रद्धा करते हैं तो फिर मंत्र और नुकसान करते हैं। इसलिए भगवान का जो राम मंत्र है ना, ये राम मंत्र है, इसमें चाहे श्रद्धा हो चाहे अश्रद्धा हो, भाव कुभाव अनक आलस हूं नाम जपत मंगल दिशि दश हूं। अरे भाव से नहीं कुभाव से भी नाम ले हो, अनक झुंझला करके ले हो, क्रोध से ले हो, आलस हूं हाँ राम 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 सो गए फिर राम 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 तो भी कहते हैं नाम जपत मंगल दिशी दशो, दसों दिशाओं में उसका मंगल होगा। आलस से लो, परवस्था से लो, ऊंघते हुए लो, क्रोध करते हुए लो, भाव से लो, कुभाव से लो। एक आदमी था वो संतों की नकल करता था, ये संत है ना ये राम राम कैसे है, राम 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 ऐसे नकल करता, चिढ़ाता था वो साधुओं को। चिढ़ाते चिढ़ाते उसका स्वभाव ऐसा हो गया वो राम राम करने में लग गया। वो कह रहे मेरे को राम राम में बड़ा आनंद आने लग गया। अब उसने कोई राम राम कोई प्रेम से किया था क्या? वो तो संतों को चिढ़ाने मस्करी करने के लिए राम 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 करने लग गया। तो ये जो है ऋषि, ये सुतीक्ष्ण जी है, राम मंत्र से उपासन तत्पर है, राम मंत्र की उपासना में लगे रहे, राम राम करना, केवल राम 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 राम। लोग कहते हैं राम राम करने से क्या होता है? राम राम करने से राम राम का जप होता है। बोलो क्या करना, क्या होता है? करके देखने तब पता चले ना क्या होता है। राम राम करने से हृदय के विचार शुद्ध होते हैं, राम राम करने से सत्संग मिलता है, राम राम करने से हमारा सीधा भगवान से संबंध होता है। कहते हैं हमारा मन नहीं लगता है, तो हमारा मन नहीं लगे तो न लगे, आप अपना राम राम करते हुए ये सोच करके नाम लें कि इस नाम से तो भगवान का मन लगता है, भगवान सुनते हैं आपका नाम। तो अपने इसमें हमारा मन नहीं लगा रही, भगवान ने खूब मन लगा के सुना है, हम तो भगवान को सुनाने के लिए नाम राम करते हैं। ऐसे ही इस हिसाब से नाम लेने वाले आनंद के साथ नाम लेते हैं। सुतीक्ष्ण जी ने कहा कि त्वन्मंत्र जापी अहम अनंत गुणा प्रमेय है, हे अनंत गुण संपन्न प्रभो, हे अप्रमेय, मेरे को तो इस संसार में कोई दूसरा साधन समझ में नहीं आया, कोई मैं ज्यादा जानकार नहीं, कोई शास्त्र पढ़ा लिखा रही, त्वन मंत्र जापी, मैं तो केवल आपका राम मंत्र है इसी का ही जाप करने वाला हूं प्रभु, इसलिए ज्यादा जानता नहीं। हे राम, मैं तो आपके दासों के दासों के दासों का दास रहना चाहता हूं। कैसी आपकी कृपा है महाराज, मैं तो संसार के इस विषय के जाल में फंसा हुआ था, आपने मुझे स्वयं ही आकर के दर्शन दे दिए, कैसी आपकी विचित्र कृपा हुई है। आप सब प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं, फिर भी ये प्राणी आपसे विमुख रहते हैं, ये बड़ा आश्चर्य है। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, परंतु सकल जीव जग होई दुखारी। सत चित आनंदमय सबका हृदय, सच्चित आनंद में डूबा हुआ है, एक सब दुखी है। दुखी क्यों है? कि उस आनंद के सम्मुख नहीं होते, इसलिए दुखी होते हैं। देखो ये भगवान के नाम मंत्र की सुतीक्ष्ण जी बहुत महिमा गाते हैं कि देखो आज ये प्रत्यक्ष हो गया ना कि आपके चरणारविंदों को मैं देख रहा हूं। क्यों? त्वन त्वन मंत्र पूत हृदय सुसदा प्रसन्न है, आपका नाम जपने वाले लोग हैं उनका हृदय बहुत पवित्र रहता है। क्या विलक्षण आपका ये श्री विग्रह है, इसलिए हे प्रभु जानने वाले आपके लोग खूब जानते रहे। मैंने तो प्रत्यक्ष आज आपका दर्शन किया है, बस यही चाहता हूं कि आपका रूप मेरे हृदय में बसा रहे और वाणी से आपका नाम लेता रहूं। राम जी ने कहा देखो सर्वंग जी, तुम्हारा हृदय बहुत प्रसन्न हो गया और जो मेरे मंत्रोपासक होते हैं वो मेरी शरण में ही रहते हैं, और तुमने जो हमारी स्तुति गाई है वो स्तुति गाने वाला मुझे बहुत खुश करने वाला होगा, बड़े प्रसन्नता देने वाला होगा। सत्पुरुषों के पास बैठ करके निर्मल ज्ञान और भक्ति के द्वारा ये मेरे नाम का जप करना चाहिए। अब मैं तुम्हारे गुरु अगस्त ऋषि के आश्रम में जा रहा हूं। सुतीक्ष्ण जी का महाराज अभी अभी तो आप आए हो, अभी आप जाने की बात क्यों कहो, आज रात भर यहां रहो, कल मेरे साथ अगस्त ऋषि के आश्रम में चलिएगा। तो उसकी भोली भाली भक्ति देखी, भोला भाला स्वभाव देखा, तो भगवान वहां रह गए। देखो भगवान को चतुराई अच्छी नहीं लगती, भगवान को तो भोलापन सीधापन बहुत अच्छा लगता है। भगवान का अच्छी बात है, तुम्हारे यहाँ रह जाएंगे, रात भर वहां रहे और प्रातःकाल वहां से रवाना हुए, सरभंग ऋषि भी साथ में, सुतीक्ष्ण जी भी साथ में, सरभंग नहीं सुतीक्ष्ण जी, और अपने आश्रम से रवाना हुए तो पास में अगस्त ऋषि का भाई का आश्रम था, वहां गए, वहां थोड़ी देर मिल करके भगवान अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंच जाते हैं। सुतीक्ष्ण जी ने जाकर अगस्त ऋषि से कहा, गुरुदेव गुरुदेव भगवान आए हैं। अब अगस्त ऋषि बड़े प्रसन्न हुए कि शीघ्र आना है, अरे भाई जल्दी लाओ जल्दी लाओ, हमारे हृदय में स्थित भगवान अब हमारे सामने है, तमेव ध्याय मानो हम, मैं तो उनका जप कर रहा था और उन्हीं का ही ध्यान कर रहा था और मैं आकांक्षा कर रहा था कि कब आएंगे, आ गए, बड़ा अच्छा हुआ। भगवान गए, भगवान को अंदर लाए और सब आराम से बैठे, फल फूल का भोजन किया। उसके बाद अगस्त ऋषि कहने लगे, बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहा था राम, क्षीर सागर पर जब ब्रह्मांड वगैरह आपके पास पहुंचे थे, रावण के वध के लिए आपकी आपसे प्रार्थना की थी, तब से मेरे मन में था कि अभी हमारे शरीर को छोड़ना नहीं है, अभी तो हमको राम जी की लीला पूरी देखनी है, सुननी है, आपके दर्शन करने हैं। क्या बताएं प्रभु, आपकी महिमा कैसे कहे, हम जितने भी महिमा कहेंगे सृष्टि में कुछ देख दाग करके बोलेंगे, ये आपकी महिमा है, ये आपकी महिमा है, ये आपकी महिमा है, लेकिन सृष्टि नहीं थी उससे पहले भी आप हैं, इधर लोग विचार ही नहीं करते, कितनी महिमा है आपकी। सृष्टि पैदा होती है और नष्ट होती है और आप ज्यों के त्यों रहते हो, कूटस्थ हो। सृष्टि प्राग एक एका एव आसीत, सृष्टि से पहले एक आप अकेले ही थे, कोई आपके पास कोई उपाधि नहीं, माया वगैरह कुछ नहीं। फिर उसके बाद जब माया को स्वीकार किया तब वो माया आपके पास आई, तो वो माया क्या है, आपका संकल्प ही माया है, इसलिए वो अव्याकृत है। अव्याकृत व्याकृत माने अलग होना और अव्याकृत माने जुड़े रहना, तो ये अव्याकृत माया है। आपका संकल्प होता है कि सृष्टि होनी चाहिए, बस ये संकल्प हुआ सृष्टि हो गई, तो आप ये सृष्टि आपसे अव्याकृत है, ये मूल में आपका संकल्प है ना, ये संकल्प ही माया का रूप लेकर सृष्टि के रूप में परिणित होती है। इस माया में क्षोभ पैदा होता है तब एक महत्तत्व पैदा होता है। देखो तार के अंदर बिजली रहती है, तार के अंदर बिजली तो है लेकिन लट्टू लगाओगे ना तो वो प्रकाश हो जाता है, ऐसे ही भगवान के अंदर सत का प्रकाश है। सत माने सत्ता, चित माने ज्ञान, ज्ञान का प्रकाश है और आनंद का प्रकाश है, सच्चिदानंद का जो प्रकाश है। प्रकाश शक्ति तो विशेषता से तो ज्ञान में रहती है, पर सत चित और आनंद इन तीनों को भगवान में से अलग नहीं बता सकते कि ये तो सत है, ये चित है और ये आनंद है, तीनों एकदम संपृक्त रहते हैं। वो प्रकाश है, उस प्रकाश को कौन धारण कर सकता है, ये महत्तत्व। जैसे बिजली के अंदर शक्ति है तो वो लट्टू के अंदर प्रकाश करने की शक्ति को बिजली से जोड़ देते हैं तब लट्टू के अंदर प्रकाश होता है, ऐसे ही एक महत्तत्व होता है। कि महत्तत्व क्या होता है कि हमारी जो बुद्धि है, बुद्धि ये महत्तत्व है, उस महत्तत्व के अंदर, महत्तत्व से जब सच्चिदानंद तत्व का संपर्क होता है तब जाकर के और प्रकाश होता है, उस प्रकाश से अहंकार बनता है जिससे आदमी मैं का व्यवहार करता है। एक अहंकार तो होता है सृष्टि में बांधने वाला, एक होता है व्यावहारिक अहंकार, मैं वहां गया, मैं वहां आया, ऐसा मैंने किया, जो सामान्य अहंकार होता है ये बांधने वाला नहीं होता। और मैं धनवान हूं, मैं ऐसा हूं, मैं विद्वान हूं, मैं त्यागी हूं, मैं ऐसा हूं, मैं आपसे बड़ा हूं, आप क्या जानते हो, ये अहंकार होता है, ये परमात्मा से दूर करने वाला अहंकार होता है। तो ये जो मैं की जो स्फूर्ति होती है ये महतत्व के साथ जब चित्तत्व का संपर्क होता है तब उससे होती है। सब अहंकार, फिर उस अहंकार से पांच महाभूत पैदा होते हैं, इंद्रियां पैदा होती है, प्राण पैदा होते हैं, मन बुद्धि सब इसी अहंकार से पैदा होती है। और ये ब्रह्मा वगैरह क्या है कि आपकी बनाई हुई सृष्टि को ही बनाते हैं। देखो सेठ साहूकार क्या करते हैं, अच्छे से अच्छे इंजीनियर को बुलाते हैं और इंजीनियर को बुला करके कहते हैं देखो भाई हमारी ये इतनी जमीन है, इस जमीन पर तुमको एक मकान बनाना है, उस मकान का दरवाजा या तो पूर्व की तरफ रखना या उत्तर की तरफ रखना, और पश्चिम का जो कोण भाग है और उस दक्षिण पश्चिम के कोण भाग को थोड़ा भारी बनाना, और जो ईशान कोण है वहां पर जलाशय रखना, अग्नि कोण है यहाँ पर रसोई का काम होना चाहिए, और टॉयलेट्स वगैरह है ये सब जो है इधर उत्तर के कोण में हो और या उत्तर की तरफ कोणे की तरफ होने चाहिए। ऐसे ऐसे वो सब बताते हैं, पूजा पाठ का ईशान कोण में स्थान होना चाहिए, ऐसी उसमें गली होनी चाहिए, घर में घुसते ही इधर इस हाथ की तरफ पेड़ियां होनी चाहिए, और इस यहाँ पर हमको वृक्ष लगाना, इस दिशा में अमुक वृक्ष होना चाहिए, हर जगह हर वृक्ष नहीं होना चाहिए, और आगे का लोकेशन भी ऐसा होना चाहिए कि कोई मार्ग जाकर के कहीं रुकना न हो। ऐसे ऐसे कई प्रकार के आप जो है उसको बताते हो, इंजीनियर वैसा नक्शा बना के देता है कि देखो बाबू ये नक्शा हमने बनाया, इतनी जमीन में ऐसा कमरा रहेगा, तो हाँ ठीक हमने पास कर दिया। तब जो इंजीनियर जो है मजदूरों को लेकर के वो मकान बनाएगा। ऐसे ही भगवान ब्रह्मा जी को सृष्टि का नक्शा देते हैं कि देखो ब्रह्मा जी ऐसे ऐसे सृष्टि बनानी है, ऐसी ऐसी सृष्टि होनी चाहिए, मानवीय सृष्टि होनी चाहिए, पशुओं की सृष्टि होनी चाहिए, पक्षियों की सृष्टि होनी चाहिए, वृक्षों की सृष्टि होनी चाहिए, लताओं की सृष्टि होनी, तब ब्रह्मा जी भगवान के बनाए हुए विधान के अनुसार सृष्टि का निर्माण करते हैं। लेकिन ब्रह्मा निर्माण करना बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात तो सृष्टि का संचालन करना है, संचालन भगवान खुद करते हैं, विष्णु भगवान। तो आप ही ब्रह्मा है, आप ही विष्णु है और आप ही शिव है, शिव होकर के इसका संहार करते हैं। यदि संहार नहीं करेंगे तो सृष्टि का नियम भी नहीं चलेगा। तो सृष्टि लीलाम यदा कर्तुम, ये सृष्टि भी एक आपकी लीला है। अब होती तो भगवान की लीला है सज्जनों, उसमें हम लोग फालतू सुखी दुखी हो जाते हैं, ये हम सुखी हो गए हमारे मन के अनुकूल नहीं हुआ दुखी हो गए। अब वहां इस सृष्टि के अंदर दो प्रकार की माया, एक विद्या माया एक अविद्या माया, ये दोनों ही माया है, ये जीवों में काम करती है। अब देखो अब बनाने वालों ने तो हॉल बना दिया, बनाने वालों ने हॉल बनाया, बनाने वालों ने ये भी कहा कि आप आओ बड़े प्रेम से बैठो, आप यहाँ सत्संग करो, राम कथा सुनो, बहुत बढ़िया बात है, और आप सज्जन लोग भी बड़े शांति से सुनते हैं, पर कोई आदमी मूर्ख आदमी आएगा यहाँ हल्ला करेगा गुल्ला करेगा, चाहे जैसे भूलेगा करेगा, नाचेगा कूदेगा चला जाएगा। तो दोनों आदमियों ने इसमें प्रवेश किया, एक ने शालीनता से और एक ने उद्दंडता से। ऐसे ही भगवान की सृष्टि में एक विद्यावान पुरुष होते हैं एक अविद्यावान पुरुष होते हैं। जो संसार के प्रवृत्ति मार्ग में लगने वाले हैं वे अविद्या के अंदर फंसे हुए हैं, और जो भगवान के भजन में लगे हुए हैं वे विद्या रूप माया के अंदर है। वो विद्या माया है, वो कभी भी किसी का नुकसान नहीं करती। वो विद्या माया माया तो कहेंगे परंतु वो विद्या माया किसी का नुकसान नहीं करते। सबसे ऊंचे तो आपके भक्त होते हैं, और भक्तों के पास जो भक्ति है वो सत्संग के द्वारा मिलती है, इसलिए सत्संग करना चाहिए। साधु संगति रेवात्र मोक्ष हेतु उदारिता। संत महापुरुष होते हैं उनके अंदर किसी से कोई इच्छा नहीं होती, किसी के लिए कोई गर्ज नहीं होती, कोई किसी की गर्ज नहीं होती। देखो गर्ज नहीं होती का अर्थ किसी का अपमान नहीं करते, उन संतों में कोई अहंकार नहीं होता। गर्ज नहीं होना अलग है और अहंकार रखना कि हमें तुम्हारी क्या जरूरत है, वो एक अलग है, वो ऐसा उनके अंदर तमोगुण नहीं होता। गर्ज नहीं करने का मतलब अंदर अपेक्षा नहीं रखते, एक बहुत बड़ा धनी आदमी, बहुत बड़ा धनी आदमी महाराज जी के पास आया। नया नया ही सत्संगी था, बहुत पैसा उसके पास। थोड़े दिनों के बाद ही कहने लगा, महाराज जी मैं कुछ सेवा करना चाहता हूं आपकी, तो जो है कुछ आप सेवा बताओ। उनका महाराज जी ने कहा, भाई महाराज जी ने देखा इसको ना कर दूंगा तो ये सोचेगा कि देखो अपना त्याग छांटते ही आएगा नहीं सत्संग में, अभी कम से कम आया है, गीता सुनता है, कुछ तो सत्संग में लगा ही है, मना कर देंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, आएगा नहीं, और अपने पास क्या जरूरत है पता नहीं। तो वो एक बार आया, दो बार आया, तीन बार महाराज जी भूल जाते थे। एक दिन महाराज जी ने रामाधार जी, जो महाराज जी के पास रहते थे, अब उनका शरीर नहीं रहा, उनसे कहा, रामाधार बाड़ी रोज आवे, कहवे पैसाड़ो है, मना करूं कापन कहीं जरूरत को नहीं तो सत्संग माणो बंद कर दे, और इस कहीं लेवा मार कहीं जरूरत दिखे को नहीं। वो कहे कि भाई थे कहीं की मन चीज बताओ, काई लेवा मारे तो पुस्तक मन मिले है, पेंसिल मारकन, लाल पेंसिल बा मारकन है, कपड़ा मारकन है, रोटी मिले, मन के जरूरत दिखे नहीं, काई बताओ, काई कहवा मार तो समस्या होगी। ओ कैर चलो जावे यार मैं भूल जाऊं, कैर चलो जावे मैं भूल जाऊं, अब तू ही बता काई करा। तो महाराज जी किए, महाराज में रामाधार जी भी अच्छा संता, रामाधार जी ने कहा कि महाराज आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हो, आपकी आंखें धीरे धीरे कमजोर हो रही, अवस्था आ रही है, तो आपके पास लैंप नहीं है, साधारण लाइट से आप पढ़ते हो, ये लट्टू की लाइट इतनी, आप एक लैंप भी नहीं मंगा दो तो भैया अब आ तू ही कह दे भैया ने, वो आवे तो तू ही कह दीजिए। तो क्या साहब रामादार, क्या हाँ रामादार जी से मिल लो। फिर रामादार जी मिले, अदर के कई गणों की एक लैंप लिया हुई हूं, वो क्या लैंप लावे, मैं तो देखो कैंटा कहे साहब थे महाराज जी ने वास्ते पूछा, वही लैंप लिया हो बस, और दो चार रुपया लैंप आते वो लैंप लिया, ठीक वो भी राजी हुए और वह भी राजी हुए। संत महात्माओं को ढूंढना पड़ता है कि हमारे पास किस वस्तु की कमी है, उनको कोई कमी होती नहीं, वो अभाव को कभी स्वीकार करते ही नहीं। अभाव को जो आदमी स्वीकार नहीं करता है उसको उस वस्तु का अभाव कभी पीड़ित भी नहीं करता है। वस्तु का अभाव तो बहुत लोगों के पास, संतों के पास वस्तु का तो अभाव है पर पीड़ा नहीं उसकी, क्योंकि स्वीकार नहीं किया। तो सज्जनों अपने लोगों के मन में जस्ती है कि हमारे पास इस वस्तु का अभाव है इसलिए हम दुखी है, इसलिए दुखी नहीं है, हमने उस अभाव को स्वीकार कर लिया, अपने में अभाव मान लिया ना, इसलिए दुखी है। तो अगस्त ऋषि बोलते हैं कि सत्संग के द्वारा ये सारा अभाव मिटता है। सत्संग क्या करता है, हमारे अंदर जो अभाव को पकड़ने की आदत है ना, ये अभाव को पकड़ने की आदत को सत्संग छुड़ाता है। जैसे छोटा बच्चा हो और वह जा करके बार बार चक्कू पकड़ता हो तो माँ उसका हाथ पकड़े छोड़, चक्कू पकड़ता है, हट उसको, जबरदस्ती छीन लेती है माँ। ऐसे ही सत्संग है, वो संसार का जो अभाव है वस्तु आदि का उसको छीन करके बाहर कर देता है। ये सब बातें हो गई, अंत में अगस्त ऋषि ने कहा कि राम हम तुमसे एक बात बोलते हैं, हमारे पास इंद्र आए थे, इंद्र ने कहा है कि राम जी बहुत बड़ा काम करने के लिए जाएंगे, हमारा धनुष है ये राम जी को दे देना, तो ये राम तुम धनुष ले लो, इंद्र का धनुष है, और ये अक्षय तुणीर है, इस तुणीर को तुम यहां रखोगे तो जितने बाण तुम फेंकोगे उतने बाण उसमें वापस भर जाएंगे, अक्षय है, इधर से बाण छोड़ोगे इधर से बाण भर जाएंगे अपने आप ही, ये तुड़ी रखो, आप रावण का वध करोगे, युद्ध करोगे, कैसे कैसे राक्षस आएंगे, और एक एक बाण के अंदर इतनी इतनी शक्ति है कि ये बाण एक बार छूटने के बाद कितने रूप बन जाएंगे, कितने बाण इसमें से निकल जाएंगे। कहते ये बात कैसे संभव है, आजकल कुछ फटाके होते हैं, हम देखते हैं दिवाली पर फटाके छूटते हैं तो एक फटाका छोड़ते हैं वो फिर ऊपर जाकर के और वो फूटता है तो कितनी चिंगारियां होती है, कितना ही प्रकाश होता है उसमें, ये कितनी निकल है तो एक और फूटने पर कितने निकलते हैं, ऐसे ही पुराने जमाने में ऐसे ऐसे बाण होते थे, एक बाण छोड़ते कितने बाण निकल जाया करते थे, ऐसे ही इसमें बाण है और आप ही को देने के लिए कहा ये तलवार दिए साथ में, ये तलवार रखो और ये अक्षय तूणीर रखो और ये बाण रखो, ये हमको इंद्र दे के गया है, ये आप स्वीकार करो और अब आपको आगे की लीला करनी है ना, तो अब आप पंचवटी में चले जाओ, वहां पर आपकी आगे की लीला पूरी हो जाएगी। अच्छी बात है, भगवान वहां से रवाना हो गए, पंचवटी क्षेत्र में आए। देखो चित्रकूट तक भगवान का जो निवास था ना, वहां प्रेमियों का निवास था और पंचवटी के अंदर निवास है, ये यहां मायावी लीलाएं होती है, वहां प्रेम की लीला हुई या मायावी लीला होती है। जैसे भगवान कृष्ण ने ब्रज में प्रेम लीला की और मथुरा के अंदर मायावी लीला की, भगवान कृष्ण की प्रेम लीला, पूतना को 5 दिन के बच्चे ने मारा, थी तो वो माया विचित्र लेकिन वहां प्रेम ऐसा था ब्रजवासियों में, किसी ने आश्चर्य नहीं किया, आश्चर्य किया भी तो वो भूल गए कृष्ण को पकड़े, कृष्ण से प्रेम करें। तो ऐसे ही राम जी के चित्रकूट के अंदर प्रेम की लीला है, प्रेमी लिए लोग वहां मिले हैं और पंचवटी में माया ही माया, माया ही माया, माया ही माया, बड़ी विचित्र लीला हुई। चाहे राम जी हो, राम जी तो एक माया में नहीं आए, सीता जी हो, चाहे रावण हो, चाहे मारीच हो, जो भी आया था माया के अंदर ही लीला करते रहे। पंचवटी में जब आए तो वहां पर गीतराज, बड़ा विशाल शरीर वाला गीतराज वहां थे, तो गीतराज वहां आए, देखा तो राम जी ने कहा अरे लक्ष्मण धनुष लाओ, ये राक्षस है, राक्षस इसको मारेंगे। तो गीतराज बोले कि राम कितने दिनों से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, मैं राक्षस नहीं हूं, मेरा नाम जटायु है, मैं आपके पिता का मित्र हूं, प्रिय मित्र हूं। ओहो आप मेरे पिता के मित्र हैं, पंचवटी में तुम्हारे ही सेवा में बैठा हुआ हूं, इतने दिन तक मैं यहां ऋषि मुनियों के आश्रमों में रहा तो मैंने उन ऋषि मुनियों से पूछा कि मुझे राम के दर्शन करने कहां होंगे, तो उन्होंने कहा कि तुम पंचवटी में चले जाओ। तो ये पंचवटी 5 वट के पेड़ है, यहां ये पंचवटी इसलिए कहलाती है, यहां आकर के मैं रहता हूं, जो तुम्हारी सहायता करूंगा, हो सकता है कभी आप शिकार खेलने जाओ, हो सकता है लक्ष्मण जी फल फूल लेने जाए, सीता जी अकेली रह जाए, उस समय सीता जी की रक्षा भी तो होनी चाहिए, मैं यहां बैठा आप लोगों की रक्षा करूंगा। कहा वाह महाराज, हे गीतराज जी आप मेरे पिता के समान हो, पिता के मित्र पिता के समान ही होते, आप यही विराजे रहो पास में और आपके द्वारा तो बड़ी भारी उपकार की बात होगी। ऐसे ऐसे भगवान जो है वहां पर निवास करने लगे। अब वो गौतमी तीर के पास में पंचवटी, बड़ी सुंदर जगह, ऐसी जगह बनाई, ऐसी जगह कुटिया बनाई, उत्तर से दक्षिण की तरफ एक कुटिया और एक कुटिया यूं पूर्व से पश्चिम तक यूं बनाई, यूं ऐसी कुटिया बनाई, एक कुटिया लक्ष्मण जी के लिए और एक बड़ी कुटिया थी वो राम जी के और सीता जी के लिए थी। लक्ष्मण जी महाराज वहां रहते और रह करके और उनको जो है तरह तरह के फल फूल वगैरह लाकर देते थे। एक बार की बात है कि लक्ष्मण जी ने राम जी से पूछा कि हे राम, मैं आज आपसे कुछ ज्ञान की बात पूछना चाहता हूं, ये मोक्ष की आत्यंतिक गति क्या है, ऐसा कौन सा साधन है जिससे निश्चित मोक्ष होता हो, आप ही बता सकते हो। देखो आप लोग कहेंगे कि इतने वर्षों तक चित्रकूट में तो उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया, कोई ज्ञान की चर्चा नहीं की, आज यहां पंचवटी में करने की क्या जरूरत है। पंचवटी है ना, ये माया का क्षेत्र है और माया का प्रभाव वहां नहीं पड़ता है जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है और जिसके अंदर सत असत का विवेक रहता है, उसके अंदर माया का प्रभाव नहीं पड़ता। तो कहा कि मुझे वैराग्य युक्त ज्ञान विज्ञान और भक्ति का तत्व समझाइए, आपके अलावा संसार में दूसरा मुझे कोई नहीं समझा सकता। राम जी महाराज कहते हैं, सुनो लक्ष्मण, सबसे पहले मैं माया का रूप बताता हूं। माया है दो प्रकार की, एक विक्षेप और एक आवरण। तो विक्षेप होती है वो तो ये संसार को बनाती है, और आवरण होती है वो जीव के ज्ञान के स्वरूप को ढकती है। तो दुनिया को आवरण जो माया है ये कष्ट देने वाली होती है, विक्षेप माया है ये नष्ट करने वाली नहीं होती। इसको गीता के अंदर जो है और ही ढंग से बात कही है। तो जीव है ना, ये आवरण माया से बंधा हुआ होता है। लोग क्या कहते हैं कि राम जी ने ना ये माया ऐसी बनाई, हम फंस जाते हैं, रुपया है उसमें फंस जाते हैं, स्त्री है इसमें फंस जाते हैं, अमुक पदार्थ है तो फंस जाते हैं, पद मिलता है तो इसमें फंस जाते हैं, राम जी की ऐसी माया है, अहंकार आ जाता है, कुछ नेतागिरी मिल जाती है तो अहंकार हो जाता है, कुछ मान बढ़ाई आती है तो अहंकार ही भगवान की माया है। इस भगवान की माया से नहीं फंसते हैं। माया का जो आवरण रूप है जिससे हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, ये जीवकृत माया है। जीवकृत माया से जीव फंसता है और नाम लगाता है भगवान पर, निज अज्ञान राम पर धरही है, तो खुद का अज्ञान राम जी पर रखते हैं। तो भुजंग रज्जु भुजंगवत भ्रांतिया है, तो डोरी उसको सांप समझ करके चिल्लाते हैं, अरे सांप है सांप है सांप है, तो ये क्या है, ये आवरण रूप माया है। तो ये असत है, असत है, लेकिन जब तक सत का ज्ञान नहीं होता तब तक वो असत का प्रभाव रहता है। सर्प को हमने डोरी को सांप समझ लिया है तो झूठा, लेकिन हमारी समझ में जो वो सांप है वो सर्प बुद्धि जब तक निकलती नहीं तब तक भय घबराहट और इधर उधर दौड़ना और उसको पकड़ने का उपाय करना ये मिटता नहीं है। गुरु मुख से सुनते हैं कि ये संसार नहीं है भगवान है, तब जाके शांति मिलती है। कैसे ही किसी व्यक्ति से सुनते हैं कि अरे ये तो डोरी है सांप नहीं है डोरी है, तो उससे भ्रम मिट जाता है। तो सबसे पहले देह एव ही संसार वृक्ष मूलम दृढ़म स्मृतम, ये शरीर मैं हूं ये दृढ़ भाव ही मनुष्य को नुकसान देने वाला होता है। शरीर मैं हूं ये तो सबसे बड़ी मूर्खता है कि जो मैं है वो सदा रहता है वाला और शरीर को लेकर कहता है कि मैं हूं। कभी कहते थे कि मैं बालक हूं, कभी कहते थे मैं जवान हूं, अब कहते हैं हम सीनियर सिटीजन में आ गए, कभी कहेंगे बुड्ढे हैं, लेकिन आत्मा तो वही है ना। एतिर विलक्षणो जीव है, जीव अपने विलक्षणता को भूल जाता है, ये आवरण माया का प्रभाव पड़ता है। कैसे मिटे कि भाई इसके लिए अपने व्यावहारिक जगत में कुछ परिवर्तन लाना चाहिए। एक तो अपने अंदर मान बढ़ाई की इच्छा नहीं होनी चाहिए, जिस अंदर मान बढ़ाई की इच्छा होती है उससे बड़ा नुकसान होता है, खुद का भी दूसरों का भी। आजकल हम लोग भी जो दुनिया को शिक्षा तो क्या देते हैं, और हमारे अंदर ऐसा ये ज्ञान का गया, हमारे टीवियों में नाम आए, हमारे टीवी सीरियल में चले, ये चले, ये बहुत बड़ी खतरनाक हम लोगों की इच्छा है। ये मिटेगी नहीं, दूर तक नहीं मिटेगी। कितनी ग्रंथ की व्याख्या कर लो, कितना ही सत्संग कर लो, कितनी कथा सुना दो, कितना ही जप कर लो, लेकिन ये इच्छा रहेगी कि हम हमारे दूरदर्शन पर हम जो है टीवी के अंदर लोगों को देवे और हमारी प्रसिद्धि हो, लाइव टीवी हो, ये हो, तब तक ये हमारे लिए बहुत खतरे की बात है। देखो क्या उपदेश देते हैं यहाँ भगवान, सबसे पहले माना भाव है, एक तो मान बढ़ाई की तो इच्छा बिल्कुल छोड़नी चाहिए। एक पराक्षेपादि सहनम, कितनी बढ़िया चुनी हुई बात है, कोई हमारे पर आक्षेप लगाता हो तो उसको सहन करना चाहिए। कोई हमको गालियां निकाले, कोई हमारे अंदर दोष नहीं है फिर भी दोष बताए तो उस दोष में सफाई नहीं देनी चाहिए। सेठ जी तो इस बात के लिए बहुत ध्यान रखते थे, कहते थे कि भाई थारा कोई दोष बतावे तो थे खुद को अध्ययन करो कि आपा में दोष है के। यदि इमें दोष थाने दिखे कि मारा दोष है तो मेरो उपकार मानो कि अरे मन मारे दोषा ने बतायो है तो दोष ने दूर करना है। क्या दोष नहीं है? नहीं है तो फिर सावधान हो जाओ कि ऐसे दोष अपने में आवे नहीं, उस व्यक्ति को उलाना मत दो। लेकिन आज क्या है, हम लोगों के ऊपर कोई बोलता है तो हम सीधे यही कहेंगे, ये देखो सच्ची बात में तो अलग बात है, लेकिन झूठा दोषारोपण करता है, झूठ हमसे सहन नहीं होता है, इसका मतलब जरूर दोष है, जरूर दोष है, नहीं तो इतना उछलने की क्या जरूरत है। ये कहते हैं कि पराक्षेपादि सहनम, दूसरा कोई हमारे पर आक्षेप करता है उसको सहन करना चाहिए। सर्वत्र अवक्रता, टेढ़ापन नहीं, वाणी से भी टेढ़ी बात बोलेंगे, शरीर से भी ऐसा अकड़ के चलेंगे और मन में भी अकड़ रखेंगे, यह ऐसे अकड़ की भावना नहीं रखनी चाहिए। और अनुकूल मिलने पर प्रसन्न और प्रतिकूल मिलने पर अप्रसन्न, ये भावना मिटनी चाहिए। ज्यादा लोगों के संपर्क में नहीं रहना चाहिए। एक संत थे, वो कोई बात करते तो लोगों से बात करते करते आंख बंद कर लेते थे। उनसे पूछा कि महाराज लोग आए आपके पास बात करने के, आप आंख क्यों बंद कर लेते हैं? उनका यूं ही कि नहीं महाराज कोई कारण होगा, ऐसे तो नहीं होगा। उनका कि देखो भाई, मैं लोगों को देखता हूं तो मैं भगवान को भूल जाता हूं, आंख बंद करता हूं तो भगवान की याद आती है, तो मैं अंदर से भगवान का ध्यान करता हूं, लोगों से बात कर लेता हूं। है संत कि साहब आप लोगों के चेहरे में ही भगवान का ध्यान क्यों नहीं कर लेते, इतनी मेरी साधना नहीं है। वो संत कहते इतनी मेरी साधना नहीं है। वो बोलते थे एकदम हंसते हुए से बोलते थे, ऋषिकेश में थे, हंसते हुए कम बोलते और बोलते बोलते आंख बंद कर लेते। ऐसी ऐसी विचित्र बातें संतों की गति, रामदास जग से लखी नहीं जाए। भगवान कहते हैं कि देखो ज्ञान और विज्ञान, एक तो शास्त्र का जो होता है ज्ञान, और जो अनुभव आती है चीज वो कहलाती है विज्ञान। कभी कभी क्या होता है कि आदमी को ज्ञान तो है लेकिन विज्ञान के अभाव में उस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं रहता है। जैसे हमारे नेत्र काम तो करते हैं लेकिन रात हो गई, रात होने पर हमको चीज दिखाई नहीं दी, हम नेत्र काम करते हैं, हम सब लाइट बंद कर दें, सब लाइट बंद हो जाए, रात होगी दिखे नहीं, नेत्र तो काम करते हैं, हमारी घड़ी कहाँ है पता नहीं, हमारी पुस्तक कहाँ है पता नहीं, हमारे कपड़े कहाँ है पता नहीं, वही लाइट के बिना क्या करें। ऐसे ही पुस्तकी ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, सुनावा भी ज्ञान है, लेकिन विज्ञान के बिना वो ज्ञान काम में नहीं आता। इसलिए विज्ञान होना बहुत जरूरी है। विज्ञान माने जो ज्ञान हमारे पास है उसका अनुभव होना, उसका व्यावहारिक जगत में प्रयोग करना, ये जरूर होना चाहिए। इस प्रकार से मेरी भक्ति करनी चाहिए, मेरे भक्तों का संग करना चाहिए, ऐसी ऐसी उपदेश की बात सुनी। उपदेश की बात सुनी तो लक्ष्मण जी महाराज बड़े खुश हो गए। भगवान शंकर बोलते हैं पार्वती उसी जंगल के अंदर तरह तरह का रूप बनाने वाली एक राक्षसी थी, उसका नाम था शूर्पनखा। वो जनस्थान में रहती थी। जनस्थान क्या है भाई? आजकल जिसको बंबई के पास थाना बोलते ना, थाना, वो स्थानक था, स्थानक। स्थानक बोलते 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 थाना हो गया, वो जनस्थान कहलाता था। यहां पर ये सब राक्षस लोग खरदूषण वगैरह यहां रहते थे। वो एक दिन घूमते घूमते गौतमी नदी के किनारे पंचवटी के वहां पहुंची। वहां नदी के किनारे देखा कि बड़े सुंदर चरण है, चरणों के अंदर ध्वजा का चिन्ह है, कमल का चिन्ह है, और वज्र का चिन्ह है, अंकुश का चिन्ह है। अरे ये चरण किसके हो सकते हैं? अरे मिट्टी के ऊपर रखा हुआ चरण इतना आकर्षक है तो वो स्वयं कितना आकर्षक होगा, कितना मनमोहक होगा। तो उन चरणों को देखते 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 आई और आकर के वो राम जी के पंचवटी के उस निवास स्थान पर पहुंच गई और बैठ गई, राम जी का दर्शन करने लगी। क्या भगवान का सुंदर स्वरूप, कंदर्प सदृशम रामम, कामदेव से भी बढ़कर जिनका सौंदर्य टपक रहा था, ऐसे राम जी को देख करके उसके मन में आया कि ये राम है, ये कौन है, मैं इनके साथ रहूं। ऐसे उसने विचार किया और वो राम जी के पास में आई और आकर के कहने लगी, भाई तुम कौन हो और इस आश्रम में कैसे रहते हो, ये जटावलकल वस्त्र धारण क्यों किए हैं, तुम्हारा इस वन में घूमने का उद्देश्य क्या है। अच्छा अच्छा अच्छा, किसी आदमी से परिचय लेने से पहले अपना परिचय देना चाहिए। ओ भूल गई, मेरा नाम शूर्पणखा है, मैं चाहे जैसा रूप बना सकती हूं। और आपने नाम सुना होगा, लंका के राजा धीराज महाराज राज शिरोमणि, महात्मा रावण का नाम सुना होगा ना, और रावण की मैं बहन हूं। मेरे साथ खर दूषण त्रिशरा ये 14,000 और सैनिक यहां पास में निवास करते हैं। हम सब ऋषि मुनियों का भक्षण करते हैं, पर तुम भी एक ऋषि मुनि से ही दिखाई दिए। भक्षण तो मैं नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ ही रहने की मेरी इच्छा है, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, पहले अपना परिचय दो। तो राम जी ने कहा कि देखो, मैं ऋषि मुनि की तरह दिखता हूं, लेकिन ऋषि मुनि के कुल में पैदा नहीं हुआ हूं, मैं क्षत्रिय हूं, अयोध्या नरेश दशरथ का मैं पुत्र हूं, मेरा नाम राम है और ये मेरी सुंदरी भारिया जनक की पुत्री है और ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण है। जो तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो ये लक्ष्मण बड़े सुंदर है। उसने कहा कि नहीं राम, ये कैसा सुंदर वन है, छोड़ो लक्ष्मण को, छोड़ो सीता को और तुम मेरे साथ ही विहार करो और मेरे साथ ही जंगलों में रहो, यहां रहने पर आपको सब चीज सब वस्तु मिल जाएगी। राम जी ने फिर उसके साथ वैसा ही विनोद करते हुए कहा, अरे क्या बताएं, तुम तो बहुत अच्छी हो भारिया ममेशा कल्याणी, लेकिन मेरी जो स्त्री है इसमें तो कोई भी दोष नहीं है, ये बड़ी सुंदर है, अनपाइनी है और इसका त्याग करना मेरे लिए संभव नहीं है। और तुम मेरी मेरे पास रहना भी चाहोगी तो तुमको सुख नहीं मिलेगा, बहुत दुख मिलेगा, क्योंकि सौत की सौत से कभी पटती नहीं है, इसलिए मेरे पास तुम मत रहो बाबा, ये मेरा ही प्राण है, बहिष् प्राण है ये लक्ष्मण, और है भी बड़ा सुंदर, हम तो थोड़े काले कलेटे काले कलूटे हैं, वो बड़ा गौरवर्ण वाला है, तुम लक्ष्मण के पास चली जाओ, वो तुम्हारे अनुरूप पति है। तो वो लक्ष्मण जी के पास गई, लक्ष्मण को कहा गया, हे लक्ष्मण, पतिर में बहुत सुंदर है, तुम बड़े सुंदर हो, इसलिए तुम हमारे पति हो जाओ, और देखो अपनी अपने भाई की आज्ञा का पालन भी करो, भर्तुर आज्ञा पुरस्कृत्य, और तुम्हारे भाई की आज्ञा का पालन करने के लिए मैं तुम्हारे पास आई हूं। तो संगत छावोद्यम आचिरम, संगत छावोद्यम आचिरम, इसलिए तुम देरी मत करो और छोड़ो, तुम मेरे साथ चले चलो। अब लक्ष्मण जी ने भी कहा, अये साध्वी, हे श्रेष्ठ स्त्री, तुम मेरी यदि पत्नी बनोगी तो तुम्हारा नाम दासी हो जाएगा, क्योंकि मैं इनका दास हूं, जो पति कहलाता है वही तो पत्नी कहलाएगी, तो मैं दास तो तू दासी कहलाएगी, जब तू दासी हो जाएगी तो तेरे को कितना दुख होगा, इसलिए मेरे पास नहीं रहो बाबा। वो राजाधिराज है, सब राजाओं के शिरोमणि है, वहां उनके पास जाओगी तुम रानी कहलाओगी, हमारे पास रहोगी तुम दासी कहलाओगी, तुम वापिस राम जी के पास ही जाओ। जब लक्ष्मण जी ने राम जी की तरफ भेज दिया तब वो बड़ी क्रुद्ध हो गई और राम को जाकर फटकारने की, हे राम, तमाशा बना रखा है, कभी इधर कभी उधर भेजते हो, आपको विचार नहीं आता है, मैं समझ गई, ये जब तक तुम्हारे पास सीता है तभी तक तुम इतने नखरे करते हो, तुम्हारे सामने अभी सीता को फाड़ देती हूं। ऐसा करके सीता की तरफ लपकी। तो उस समय राम जी ने आज्ञा दी लक्ष्मण को आज्ञा दी कि इसका नाक कान काट दो। तो लक्ष्मण को जाकर इसने कहा था ना कि भाई की आज्ञा मानो, लक्ष्मण जी ने करके नाक कान काट दिए, उसके लिए भाई की आज्ञा मान ली, भाई की आज्ञा मान ली हमने। अब वो कटी नाक और कटा कान लेकर के गई रोते बिलकते खर के पास। खर के पास गई कि कह रहे, खर ने कहा कि कौन ऐसा है जो मृत्यु के मुख में हाथ दिया हुआ, तेरे नाक कान किसने काटे? ये मेरे नाक कान नहीं काटे हैं भैया, ये सारी राक्षस जाति का नाक कान काटा है, और कैसे कैसे लोग यहां तुम्हारे घुस गए और तुम हमारी परवाह नहीं करे, नाम तो बताओ। सीता और लक्ष्मण के साथ राम यहां सारे दंडक वन में निर्भय होकर विचरण करते हैं, सब ऋषि मुनियों को उन्होंने निर्भय होने की बात कह दी है। यही पास में गौतमी नदी, गोदावरी नदी के किनारे इनका आश्रम है, और माम एवं कृतवास्तस्य भ्राता तेनैव प्रेरित है, उसने अपने भाई को प्रेरणा दी, उसी ने मेरे नाक कान काटे। यदि तुम मेरे सच्चे भाई हो, अच्छे कुल में पैदा हुए हो, इस नाक कान का तुम्हें बदला लेना चाहिए, और बदला भी यही कि उनका मैं खून पीना चाहती हूँ, तुम उनको मार दो फिर उनका खून पीना चाहती हूँ, और यदि ऐसा नहीं कर सकते हो तो मुझे बता दो कि हम लड़ाई युद्ध नहीं कर सकते, तुम्हारे सामने मैं प्राणों का त्याग कर दूंगी। खरदूषण ने कहा इतनी लंबी चौड़ी बात ही नहीं है, अभी हम जाते हैं। अब वो 14,000 सैनिकों को लेकर गए। व्यास जी महाराज बड़े संक्षेप में ये युद्ध बता रहे हैं। भगवान ने कहा है लक्ष्मण सावधान, यहां से सीता को लेकर किसी गुफा में चले जाओ, ये युद्ध सीता देख नहीं सकेगी, कला कलेजा फट जाएगा, और राक्षसों का ये देश है, कौन गुफा में कौन राक्षस मिले और कौन क्या कुछ कर डाले, इसलिए इसकी सेवा में तुम रहो, लेकिन अपने को छिपाए रखना, और मैं इन राक्षसों के साथ युद्ध करता हूं। लक्ष्मण कुछ बोलने लगे कि मैं आपको युद्ध में कैसे झोंक दूं, ऐसा कुछ बोलने के लिए तैयार हुए, सौगंध चुप रह जाओ, शापितोसि ममो परि, मैंने तुमको शाप दे दिया, मैंने तुमको रोक दिया, नहीं बोल सकते तुम। लक्ष्मण बिचारे चुप हो गए। अब उसके बाद राम जी महाराज अपनी कमर भर बांध करके और जो है धनुष बाण लेके खड़े हो गए, खड़े हो गए, खूब घमासान युद्ध हुआ। उस युद्ध के अंदर भाई सब मारे गए, खरदूषण 14,000 सब मारे गए, एक ही बाण से मारे गए। एक बाण से कैसे कि भगवान ने एक मोहनास्त्र छोड़ा और आपस में सब मोहित हो गए, सब मारे गए। कहते ऐसा ही बाण यदि लंका में छोड़ देते तो इतना ही बंदरों को युद्ध ही नहीं करना पड़ता, ये भगवान सोच समझ के छोड़ते हैं। जिस बाण की महिमा को देखने वाला सिवाय भगवान के कोई न हो, वहीं पर यह बाण छोड़ा जा सकता है। लंका में तो सब बानर दृष्टा है, और जो ये लक्ष्मण जी भी दृष्टा है, इसलिए भगवान ने ये यहां भगवान के इस बाण का दृष्टा कोई नहीं है। जगहान है प्रहार देन सर्वानेव रघुत्तम है, भगवान ने उनके तो बाणों को तो जो है मार दिया, और एक बाण से हजारों बाण पैदा करके भगवान ने सबको नष्ट कर दिया। इधर शूर्पणखा थी, वो जाई गई जाकर के और लंका के अंदर अब शोर मचाने लगी, सभा के अंदर गई, रावण के पास में गई। रावण ने अरे अरे शूर्पणखे क्या बात है भाई, वो तिष्ठ खड़ी हो क्यों सभा के अंदर ऐसे तुम लेट गई हो, तुम्हारा नाक कान किसने काटा है? इंद्र ने, यमराज ने, वरुण ने, कुबेर ने, बताओ किसका नाम, इन्हीं में से होगा कोई, भस्म कर दूंगा अभी, नाम बताओ। वो राक्षसी रोती रोती कहने लगी तुम तो हरदम मदिरा पान में मस्त पड़े रहते हो, तुम अपने रनिवास में पड़े रहते हो, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, तुम्हारे ये गुप्तचर तुम्हें कोई बात बताने वाले नहीं है, तुम्हें आकर के किसी ने कहा कि जनस्थान में तुम्हारे 3 भाई और 14,000 सैनिक मारे गए, किसी ने सूचना दी? ये तो नहीं कहा, तो फिर तुम्हारे गुप्तचर क्या करते हैं? अरे हमारे गुप्तचर तो खरदूषण के साथ ही थे, तो वो भी शायद मर गए होंगे, क्या वो मर गए तो तुमको पता नहीं है? अब जाओ जनस्थान में, कोई ऋषि मुनियों को वहां भय नहीं है, राक्षस नाम की कोई चीज वहां पर मिलने वाली नहीं है, सब खत्म हो गए हैं, कोई आया है उन सबको खत्म करने वाला, कौन है? अयोध्या का राजा दशरथ का बेटा राम है, उसने किया है। कोवा राम है, राम कहां से आया है, क्यों आया है, और उसने खरदूषण आदि राक्षसों क्यों मारा है, मुझे सारी बात कहो, मैं मूल घात करूंगा, मूल घात, मूल में राम को ही मारूंगा, ताकि राक्षसों को फिर मारने वाला कोई न रहे। सुरूप ने कहा, भैया जनस्थान में मैं घूम रही थी, मुझे प्यास लगी आई, गोदावरी नदी के किनारे गई, वहां पर पंचवटी के अंदर वो लोग रहते थे, मैंने देखा ये जटावलकल धारण करने वाला ऋषि यहां कैसे आ गया, तो मैं उस आश्रम के वहां गई, क्योंकि तुम्हें नहीं कह रखा है कोई ऋषि मुनि मिले उनको उनका नाश कर दो, मैंने इनके ऋषि मुनियों का रूप देखा, इनका नाश करने के लिए गई, परंतु वहां एक सुंदर स्त्री को मैंने देखा, ऐसी स्त्री न देवताओं में न गंधर्वों में न मनुष्यों में कहीं नहीं, सुन भी नहीं सकता कोई, ऐसा उसका सौंदर्य देखना तो है ही अलग। मैंने देखा कि ये स्त्री कैसे दैसे हमको मिल जाए तो हम लेकर के तुम्हारे पास आना चाहते थे, लेकिन उसी समय में लक्ष्मण नाम का एक उसका छोटा भाई, उसने मेरे नाक कान काट दिए, मैं बड़ी दुखी होकर के खर के पास गई, और खर उस समय युद्ध करने के लिए सबको लेकर के वहां आया, भस्मी कुरिया न संदेह, तब उसने सबको मार दिया, भस्म कर दिया। अब यदि आप भी उसके साथ युद्ध करोगे तो मुझे तो ऐसा लगता है वो सबको भस्म कर देगा। अब आपको क्या करना है, यदि सीता को प्राप्त करना है तो आप कुछ उद्योग करो, और नहीं करना है तो अब जो हो गया सो तो हो गया, उसके लिए मैं भी रोती हूं और तुम भी रो बैठ करके, और तो कोई उपाय नहीं है, तुम राम के सामने ठहर नहीं सकते, ऐसा लगता है उसका इतना पराक्रम है। ये सब बात सुनी तो अच्छा ठीक है ठीक है, जाओ तुम निवास करो। सब रात्रि के अंदर सो गए। रावण बैठे बैठे विचार करता है, एकेन रामेण कथम मनुष्य मात्रेण नष्ट सबलखरों में, एक राम ने मनुष्य होकर के हमारे सारे खर दूषण आदि 14,000 सैनिकों को मार दिया, ये कोई मनुष्य है नहीं हो सकता। रघुकुल में पैदा होने वाला दशरथ का बेटा राम सामान्य मनुष्य है नहीं, नहीं ये मनुष्य नहीं है, ये कोई साक्षात परमात्मा है, क्योंकि मैंने सुना है कि सब देवता ब्रह्मा वगैरह क्षीर सागर के पास भगवान नारायण के पास गए थे, उन्होंने उनसे प्रार्थना की थी, उन्होंने उनको आश्वासन दिया है कि मैं मनुष्य रूप से अवतार लूंगा, क्योंकि मेरी मृत्यु मनुष्य से ही होने वाली है, मैंने सबसे अभय प्राप्त किया, एक मनुष्य को छोड़कर तो वो मनुष्य में ही आए, आहा कितना अच्छा हो उस नारायण के द्वारा मैं मारा जाऊं, नारायण के द्वारा मारा जाऊंगा तो मुझे लंका नहीं वैकुंठ राज्यम, मुझे वैकुंठ मिलेगा, और यदि कोई सामान्य ही कोई आया होगा तब तो फिर मुझे लंका का राज्य जैसा है वैसा मिलेगा, दोनों हाथ में लड्डू है, यदि मैं मारा जाऊंगा तो वैकुंठ में जाऊंगा, और यदि मैं उनको मार दूंगा तो ये राक्षस राज्य है ही मेरे पास, ये मुझे मिल ही जाएगा, बड़ा अच्छा हुआ। लेकिन विरोध बुद्धि से ही उनके पास जाया जा सकता है, प्रेम भक्ति से तो हो नहीं सकता, क्योंकि प्रेम तो आज तक मैंने नारायण से किया ही नहीं। तो विरोध बुद्धि व हरिम प्रयामी द्रुतम, जल्दी करना चाहिए, न भक्तिया, भक्ति तो मेरे पास है ही नहीं, तो भगवान मेरे पर कृपा कैसे करेंगे, विरोध करता रहूंगा, और विरोध करने के लिए मुझे उनकी प्यारी से प्यारी चीज छीननी चाहिए। तो भगवान को संसार में सबसे प्यारी चीज क्या लगती है, भगवान को सबसे ज्यादा प्यारी अपनी भक्ति लगती है, तो भक्ति ही भगवान की स्त्री बनकर आई है। ये राक्षसी क्या जाने, ये तो सौंदर्य बाहर का ही जानती है, अरे भक्ति का सौंदर्य बहुत विचित्र होता है, अतएव मैं भक्ति स्वरूपा सीता का ही हरण करूंगा, और ऐसा हरण करने से राम जी मुझे मारने के लिए आएंगे और मेरा कल्याण हो जाएगा। पर ये काम मुझे अकेले में नहीं करना चाहिए, किसी न किसी की सहायता लेनी चाहिए। सहायता के लिए मुझे कौन मिल सकता है? सहायता के लिए ऐसा ही मिल सकता है जिसके अंदर कुछ भक्ति हो, कुछ भगवान का प्रभाव जानने वाला हो और कुछ मेरी जाति का भी हो, क्योंकि ऋषि मुनि तो मेरी कोई सहायता करेंगे नहीं। मेरी जाति का भी हो और उस राम का प्रभाव भी जानता हो, ऐसा कौन मिल सकता है? हाँ, समुद्र के उस पार वो मारीच रहता है, मारीच से कई बार मैं मिला हूं, तो मारीच मुझे भगवान का प्रभाव ही बताता रहता है और वो कहता है कि ऐसे भगवान है, ऐसे भगवान है। मैं सुनता तो हूं लेकिन वापस मैंने आज तक कभी उसको जवाब नहीं दिया। तो उस मारीच के पास चला जाए, मारीच के पास जाकर उसके पास बैठकर कुछ विचार करके और फिर आगे का कार्यक्रम तय किया जाए। अतएव आज रात्रि में तो यहाँ विश्राम करते हैं, प्रातः काल जल्दी होते ही हमको मारीच के वहां पर चलना है। राम राघव राम राघव।